Market Monster. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hain Market Mantra ke ek aur taza ank ke saath. Is karyakram mein hum desh videsh ki aarthik khabron ko padhenge aur saath hi jaiza lenge pramukh share bazaron ke chadte utarte graph par aur charcha karenge. स्टूडियो में मौजूद बिजनेस जर्नलिस्ट दीपशिखा सिकरवार से. दीपशिखा, मार्केट मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत.
धन्यवाद हर्ष.
सो नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश.
Yes, thank you, Harsh. Here we go. BSE Sensex jumps 539 points. Nifty closes above 22,000 as US Fed signals 3 rate cuts this year. US Federal Reserve holds interest rates unchanged for the 5th straight time. Bank of England also keeps key interest rate steady. And gold jumps over 1,000 rupees in futures market. Silver also rises 989 rupees at NCX.
शेयर बाजारों में आज बढ़त. बीएसई सेंसेक्स 539 अंक बढ़ा तो निफ्टी में 173 अंक की बढ़त. अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने लगातार पांचवीं बार अपनी दरों में कोई बदलाव नहीं किया. ब्याज दरें 5.25 से 5.5 फीसदी के दायरे में ही रखी गईं. बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया. और सोने की कीमतों में आज बढ़ोतरी. एमसीएक्स में 1054 रूपये की बढ़त के साथ 10 ग्राम सोने की कीमत 66,804 रूपये. शेयर बाजार आज संभले हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 1% का आज उछाल रहा है. सेंसेक्स 539 अंक बढ़ा और 72,641 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी में 173 अंक की बढ़त हुई और ये 22,012 पर बंद हुआ. बीएसई मिड कैप में 2.36% की बढ़ोतरी रही, जबकि स्मॉल कैप में 2% की बढ़ोतरी रही.
रिटेल स्टॉक्स नाउ. बेंचमार्क इक्विटी इंडिसेस सेंसेक्स एंड निफ्टी सर्ज्ड नियरली 1% टुडे इन टैंडम विद अ रैली इन ग्लोबल मार्केट्स आफ्टर द यूएस फेड प्रोजेक्टेड 3 रेट कट्स दिस ईयर. द 30 शेयर सेंसेक्स रोज 539.50 पॉइंट्स और 0.75% टू सेटल एट 72,641. And NSE Nifty gained 173 points or 0.79% to close at 22,012. From the Sensex basket, NTPC, Power Grid, Tata Steel and Indus Inn Bank were the biggest gainers. On the other hand, Bharti Airtel, ICICI Bank, Maruti and Asian Paints were the laggards. In the broader market, the BSE Midcap Index ended 2.36% higher, while the Small Cap Index rose 2%. In the sectoral indices at the BSE, power and realty indices both rose 3% each. The industrial sector jumped 2.80%.
और आज के मार्केट पे दीपशिखा आपकी त्वरित टिप्पणी. कुछ सत्रों में गिर रहा था, अचानक से बिकवाली का एक दौर शुरू हुआ था, लेकिन काफी कुछ संभला है. मिड टाइम करेक्शन इसको आप मानती हैं?
ये आज का जो भी करेक्शन अगर आप कहें, ये जो ओवरऑल ग्लोबली हम देख रहे हैं मार्केट्स में, जो यूएस फेड ने डिसीजन उनका जो आया है डिसीजन, बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी आया, तो लार्जली जो यूएस फेड का डिसीजन है उसका असर ग्लोबल मार्केट्स पे रहा और वही असर यहां भी दिखाई दिया.
But the markets, they say it's the nature of the markets to be volatile. But pre-election time, you think it's being a little more volatile than normal and yet being somewhat steady. I mean, it's a bit of a dichotomy there.
You know, typically you see some sort of an upheaval going forward towards the election if there is a bit of political uncertainty. But if you look at the market, I think markets are fairly confident of what the outcome that it's expecting from the election. So
yes.
I think that has been discounted already.
Mm-hmm.
But it is getting impacted by what's happening in the global markets to a large extent.
Mm-hmm.
So anything happening there. So if the US Fed is sneezing, definitely we are catching cold. So I think that phenomenon is at work.
और आज के दौर में अगर देखें तो आपने बहुत सही कहा कि कुछ पॉइंट्स हैं कि एक तो किसी भी देश का मार्केट हो वो ग्लोबल इम्पैक्ट से अछूता नहीं रह सकता, उस पर ग्लोबल इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन भारत जैसे बड़े बाजार में जहां 140 करोड़ की हमारी आबादी है और काफी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अब मार्केट में घुसे हैं, पर्टिकुलरली आफ्टर कोरोना पीरियड्स, तो एक तो बहुत कुछ हो भी जाए तो मार्केट अपने को संभाल लेता है, क्योंकि हमारे रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं केवल डिपेंडेंसी जो है वो एफपीआईज पे नहीं है, एक फैक्टर तो ये है, मानती हैं?
बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप देखें पिछले कुछ वर्षों से जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप रिटेल भी ले लें, रिटेल और दूसरा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के द्वारा जो निवेश हुआ है वो काफी हद तक ये बाजार में जो बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है तो उसको संभालता है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा कुछ बहुत जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ जाती है तभी मार्केट में वो, अगर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा उस पर शॉक आता है, तो ये जो आप कह रहे हैं कि वो ऊपर नीचे ये चल रहा है और उसको संभाल रहे हैं वो उससे, तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो रुतबा कहना चाहिए जो बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में उसका काफी असर देखने को मिलता है।
आई नो, एक थोड़ा सा जटिल सवाल और पूछ रहा हूं कि मार्केट जो भी है ये अपने वैल्यूएशन के हिसाब से सही जगह पर है या कोई आप बबल देख रही हैं इसमें?
देखिए, बहुत समय से इसकी बात हो रही है कि वैल्यूएशंस जो हैं बहुत अनरियलिस्टिक हैं और एक बबल है, लेकिन आप अगर देखें तो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बराबर, रिटेल भी आ रहा है, विदेशी भी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जिन वैल्यूएशंस की बात हो रही है वो बहुत आगे की बात हो रही है, मीडियम टर्म का लोग उस पे बेट कर रहे हैं। तो और इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है ओवरऑल, अगर आप इकोनॉमी का ग्रोथ स्टोरी देखें तो वो काफी रोबस्ट है, तो एक निवेशक के नजरिए के हिसाब से ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ा एक बबल यहां पे बन रहा है।
तो ऐसे में अगर थोड़ा बहुत मार्केट ऊंच नीच भी हो, थोड़ा गिरे भी, तो एक जो आम निवेशक है उसे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, उसे बने रहना चाहिए। अगर कंपनी की प्रोफाइल अच्छी है तो वो सेंसेक्स देख के ना निवेश करे, कंपनी देख के निवेश करे।
कंपनी देख के, बिल्कुल, फंडामेंटल्स जो है किसी भी कंपनी में किसी भी सेक्टर में उस पे बराबर ध्यान रखिए। जहां आपको एंट्री मिल रही है वहां एंट्री कीजिए, और अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक भी करते रहिए।
Deepshika, for a long time it was the large cap index which was the large caps which was supposed to be a safe bet for anybody, but in the last few months one would say that, as our report says, BSE mid cap index ended 2.36% higher, small cap index rose 2%. There seems to be greater confidence, maybe I could say, for the great Indian middle class in the mid cap and the small cap, and they seem to be having greater confidence in these sectors, small cap and mid cap. Do you think
absolutely
that also reflects the growth of the or the great Indian growth story it reflects?
Yeah. Absolutely, Lalima. If you see, we've been seeing a very secular movement in the market. You know, for quite some time, the Indian stock market, you would see only, you know, the top-notch stocks moving.
Mm-hmm.
But past few months or even past 1 year, if you've seen, it has sort of moved around. The movement has democratized.
Yes.
So you're seeing this secular trend, which definitely, and if you look at the overall performance of companies also, I think that is something which the investors are betting on, and definitely the India growth story.
Bilkul. चर्चा कर रहे थे स्टॉक मार्केट्स की, और दीपशिखा जो आज की हमारी एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है अगर कभी मार्केट गिरे भी, क्योंकि अगर आपने कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर पैसे लगाए हैं तो उसमें आपको नुकसान होने की कम गुंजाइश होती है। लेकिन दीपशिखा, आपने ये भी कहा कि बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते चलें, वो जो प्रॉफिट बुक करें उस पैसे को कहां लगाएं?
बिल्कुल, ऐसा बहुत मार्केट मौका दे रही है बहुत सारे स्टॉक्स में एंट्री का निवेशकों को, बट अगेन आप फंडामेंटल्स देखिए, उन क्षेत्रों को देखिए, उन क्षेत्रों में जो कंपनियां हैं उनको देखिए कि जहां पे आपको लगता है कि जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी का असर जो है वहां पे ज्यादा आ रहा है, वो क्षेत्र, वो सेक्टर्स जहां पे आपको लगता है कि थोड़ी अनसर्टनिटी, चूंकि वो ओवरसीज इकोनॉमी से प्रभावित हैं, उन क्षेत्रों में थोड़ा सा केयरफुली इन्वेस्ट करें।
बिल्कुल, और रुपए की बात करेंगे, फॉरेक्स मार्केट में आज एक डॉलर की कीमत 83 रूपये 15 पैसे रही। डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार के समय 103.43 पर था। और एशियाई और यूरोपीय बाजारों का क्या हाल रहा ये भी हम बताएंगे, और फिर बात करेंगे अमरीकी बाजारों की। एशियाई शेयर बाजारों में भी आज उछाल रहा है, जाहिर सी बात है यूएस फेड की घोषणा का असर रहा है, जिसमें एक तो उन्होंने बदलाव नहीं किया है और साथ ही 3 कट्स हो सकते हैं इस साल, ऐसा प्रोजेक्शन है, इसका असर रहा। हालांकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स मामूली 0.08% का आज कमजोर हुआ है। दक्षिण कोरियाई बाजार के कॉस्पी में भी 2.35% की मजबूती रही, जबकि जापान का निकेई सूचकांक 2% बढ़ा है। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.9% की बढ़त रही है। सिंगापुर बाजार भी 1.3% बढ़ा। यूरोपीय बाजारों में अभी कारोबार चल रहा है, लंदन का फुटसी 100.96% की बढ़ोतरी पर है, जबकि जर्मनी का डैक्स 0.5% मजबूत हुआ है। फ्रांस का कैक 40 फिलहाल सपाट बना हुआ है।
US markets, let's move on to that. All right, the US stock market ended higher yesterday after the Federal Reserve eased investor jitters by keeping borrowing costs unchanged and reinforcing expectations that rates could be cut as many as 3 times this year. At the closing bell, the Dow Jones Industrial Average rose 1.03%, the S&P 500 gained 0.89%, and the Nasdaq Composite soared 1.25%. Deepshika, the comparisons are odious. Yes, but let's do it anyway. U.S. markets seem to have stabilized despite the quote-unquote elevated inflation. And Japan seems to be in recession, technically speaking. Where do you see the global scenario? China, we had heard the realty sector had gone down and also the economy was slowing down. What is an overview of the U.S. markets vis-a-vis the other markets in the global arena?
So if you look at US and if you look at the latest commentary from the Fed, the commentary is very dovish. They are saying we are going ahead with the rate cuts, even though, you know, there is this there is a slight concern, and essentially they are saying that they can probably live with the elevated inflation which is there. They are also seeing growth. So overall, if the U.S. economy is coming back on track, it will definitely have an impact on the overall global economy. Mm-hmm. China, as you said, that there was a concern emanating from the real estate sector. There still seems to be some kind of a concern there, not completely eliminated. But the government there has taken a number of measures to sort of boost the local economy, and those measures seem to be having impact at some level. Mm-hmm. So hopefully, you know, once the global economy comes back on track, probably Chinese economy will also get some sort of a lift there. Japan, if you see, Japanese central banker also has taken very drastic measures. They've raised the rate after so many years. Mm. So definitely some measures are being taken to lift the economy and, you know, to allow it to move in tandem with what's happening in the other parts of the world.
And what about the European markets?
European markets also, I think the impact was felt from the US Fed's decision today. Mm-hmm. And also, if you see, the Bank of England also announced no change. But, you know, the indications are that they will also move in tandem with what's happening in the US. Mm-hmm. So I guess that impact would be felt in Europe as well.
बिल्कुल, लगातार हमने जितने चाहे डोमेस्टिक मार्केट्स की बात की या यूरोपियन एशियन मार्केट की बात की या यूएस मार्केट की बात की, टुडेज मार्केट अक्रॉस द ग्लोब वाज डोमिनेटेड बाय यूएस फेड्स डिसीजन। तो हम जरा डिकोड कर लें कि आखिर यूएस फेड ने किया क्या है। दरअसल अमरीकी फेडरल रिजर्व में लगातार 5वीं बार अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों में कोई बदलाव तो नहीं किया है। यूएस फेड ने ब्याज दरों को 5.25 से 5.5% के दायरे में ही रखा है। अमरीकी सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने 2 दिनों की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक के बाद ब्याज दरें नहीं बदलने का फैसला किया। हालांकि कमेटी को उम्मीद है कि मुद्रा स्फीति के बावजूद इस साल 0.25% की दर से 3 बार ब्याज दरें घटाई जा सकती हैं, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने इस साल के लिए औसत ब्याज दरें 4.5 से 4.75% के बीच रहने की उम्मीद जताई है। इसका मतलब सीधा ऐसा समझा जाना चाहिए कि इस साल के अंत तक अमरीकी सेंट्रल बैंक 0.75% की कटौती कर सकता है, यानी 0.25% की कटौती तीन बार अगर की जाती है तो 0.75% की कटौती हो जाएगी। और इसको जरा समझने के लिए हम ये दीप शिखा से ये समझना चाहेंगे कि क्यों और कैसे यूएस फेडरल के ब्याज दरों को लेकर जो फैसले होते हैं वो दुनिया की बाजारों को प्रभावित करते हैं। दरअसल जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि जब जब यूएस फेड अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो लोग वहां पैसा जमा करने चले जाते हैं, चाहे वो एफपीआईज हों बड़े बड़े या कंपनियां हों। इससे होता क्या है कि शेयर मार्केट से पैसे निकल जाते हैं और एक बिकवाली आ जाती है, क्योंकि वहां पर आपको फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है और सेफ रिटर्न आपको मिल रहा है। लेकिन जब ब्याज दरें यूएस फेड कम करता है, वहां ब्याज कम मिलने लगता है, तो वापस लोग मार्केट की ओर आते हैं। क्या मैं सही समझ रहा हूं?
बिल्कुल हर्ष, यूएस एक वो कहना चाहिए कि एक वो सूर्य की तरह है कि सब सारा जो विश्व की अर्थव्यवस्था है चारों तरफ उसके घूमने लगती है, जैसे स्टार्स घूम रहे होते हैं। तो यूएस फेड का जो डिसीजन आया है अगर आप देखें, और ये बहुत ही एंटिसिपेटेड डिसीजन था, ट्रेडर्स जो हैं दुनिया के ट्रेडर्स जो हैं इसको इस स्टेटमेंट को बहुत गौर से देख रहे थे। तो आज जो है कोई डिसीजन नहीं आया है, तो यही कहा जा रहा है नो न्यूज इज गुड न्यूज बेसिकली। सो कुछ किया नहीं है उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो इंडिकेशन दिया है कि वो आगे ऐसा करेंगे, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रेट कट्स जो है 3 रेट कट्स का इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जून की जो उनकी बैठक है वो तब एक रेट कट आ जाए। दूसरा, जो एक सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहा था फेड, ये शायद फेड जो है तैयार कर रहा है उस सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, उसकी प्लेबुक जो है सॉफ्ट लैंडिंग की तैयार हो रही है। तो हालांकि अर्थव्यवस्था जो है वहां पर ऐसा ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेहतर रहेगी, इन्फ्लेशन भी थोड़ा एलिवेटेड रहेगा, लेकिन यूएस फेड इस रिस्क के साथ साथ रेट काटना चाह रहा है। तो ये विश्व की जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अगर आप देखें कि ग्लोबली फाइनेंशियल सिस्टम्स जो हैं अब बहुत इंटीग्रेटेड हैं, तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि यूएस फेड में अगर उनको छींक आती है तो दूसरे बाजारों में सर्दी लग जाती है। तो चूंकि ये इंटीग्रेशन है तो जाहिर सी बात है कि उसका असर हर बाजार पे होता है, हमारे भी बाजार पर आज देखा गया, बाकी भी विश्व के बाजारों पर देखा गया।
राइट, मूविंग ऑन टू, यस
बिल्कुल, एक सवाल और था कि हालांकि आम तौर पर ऐसा होता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं यूएस फेड के, और लगातार जब जैक्सन होल की मीटिंग के बाद वो लोग बढ़ा रहे थे अपनी, फिर भी आप देखें कि जिस तरीके से भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मुद्रास्फीति को और अपनी ग्रोथ को एक तरीके से बैलेंस किया था पिछले साल, जबकि पूरी दुनिया एक तरीके से कहें आप तो यह था कि मंदी की ओर जा रही है, और जैसा कि अभी लालिमा ने भी कहा कि जापान और तमाम दूसरे देश अभी भी उससे उबर नहीं पाए, इसके बावजूद मार्केट जो है हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्या वजह मानती हैं आप इसकी?
देखिए, रिजर्व बैंक की जो नीतियां रही हैं, रिजर्व बैंक अगर आप देखें कि विश्व के सारे रिजर्व बैंक जो है आपस में बहुत ही कोऑर्डिनेट करके जो भी निर्णय होता है वो लेते हैं, लेकिन हमारे यहां रिजर्व बैंक ने जो हमारा डेटा था, जो देश से इन्फ्लेशन का प्राइसेस का डेटा आ रहा था, उसे खास तौर पे मेंटेन किया, और जाहिर सी बात है मार्केट्स भी हाई इन्फ्लेशन को नहीं, लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो रिजर्व बैंक ने दोनों एक बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग एक्ट किया कि अर्थव्यवस्था को भी बहुत ऐसा नुकसान नहीं हुआ और इन्फ्लेशन मैनेजमेंट भी उनका अच्छा रहा। तो ये दोनों सिग्नल जो है मार्केट के लिए बहुत ही इनकरेजिंग थे, और अगर आप देखें कि सरकार की तरफ से भी फिस्कल डेफिसिट पे बराबर एक नजर रखी गई, उसको बहुत बढ़ने नहीं दिया गया, तो दोनों सरकार और रिजर्व बैंक ने बहुत ही आपस में मिलजुल से काम किया है, जिसकी वजह से आपको इम्पैक्ट जो है बाजार पे दिखाई दिया।
इट्स इंडीड अ टाइटरोप वॉक फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कीप ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन बैलेंस्ड। Let's move on. The Bank of England held interest rates steady at 5.25% today, but hinted at cuts on the horizon as inflation falls faster than expected. The Monetary Policy Committee voted 8-1 to keep rates steady, with one member voting to cut by 25 basis points to 5%. Notably, no member voted for further hikes for the first time in this cycle after two members favoured a quarter point increase at the previous meeting. Headline inflation slid by more than expected to an annual 3.4% in February, hitting its lowest level since September 2021. The central bank expects the consumer price index to return to its 2% target in the second quarter as the household energy price cap is once again lowered in April. So inflation stabilizing in UK means good news for us, because our exports would it help our exports?
If you see, UK is an investment base for Indian companies and also a market for Indian companies. So definitely, if their economy is back on track, it would definitely help our companies who are selling in that market and also who are investing in that market.
Mm-hmm.
And from what looks like from Bank of England's decision today, they are probably expecting, they are probably looking at rate cuts going forward. So definitely it's a positive move for their economy.
Mr. Sunak ke liye to ye achhi khabar hogi, because he was trying for long.
बिल्कुल, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था वोटर्स के बीच में, तो अब अगर वो, हमने देखा कि वो कम होने लगा है, इंटरेस्ट रेट्स भी अगर कम होना शुरू हो जाते हैं तो डेफिनेटली पॉलिटिकली इट वुड हैव सम इम्पैक्ट,
क्योंकि लंबा संघर्ष चल रहा था और जो यूके की, इंग्लैंड की जनता थी वो भी खासी परेशान थी वहां की महंगाई को लेकर. तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में, लालिमा जो आप कह रही थी कि एक बार उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा.
सो व्हेन वी टॉक ऑफ इन्फ्लेशन देयर, वुड इट ऑल्सो इंक्लूड फूड प्राइसेस, बिकॉज द बज़ इज दैट द फूड प्राइसेस हैव गॉन अप इन यूके.
Food prices definitely, if you see globally after the geopolitical conflict in Europe, because Ukraine and Russia, they had a bit of supplies on the wheat side. So those measures were having some impact. Those issues were having an impact on global food prices.
Mm-hmm.
And if you see, we also were trying to sort of restrain some bit of exports in India because of this, sudden spike in global food prices, definitely.
Right. Let's move on. The Securities and Exchange Board of India, SEBI as we call it, has put in place a framework to introduce the beta version of the T+0 trade settlement cycle on an optional basis from 28th of March. From 28th March, it will be launched between 9:15 a.m. and 1:30 p.m. This will be in addition to the existing T+1 settlement cycle in the equity cash market. SEBI has said that the beta version of T+0 settlements will be introduced for a limited set of 25 scrips and with a limited number of brokers. T+0 settlement is the process of settling trades on the same day, which means that the seller of stocks will receive money on the day of sale, unlike T+1.
इसकी डिमांड बहुत दिनों से चल रही थी,
बहुत समय से चल रही थी और बहुत इस पे चर्चा भी चल रही थी कि कब हमारा देश जो है इस पे T+0 पे मूव करेगा. तो ये सेबी ने एक कदम लिया है जो निवेशकों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, कि आपने जब बेचा उसी दिन आपको पैसे मिल जाएंगे उसके.
इस पे वॉल्यूम बढ़ेगा ट्रेडिंग में?
बिल्कुल, वॉल्यूम भी बढ़ेगा क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी बराबर आपकी बनी हुई रहेगी, क्योंकि आप ब्लॉकेज नहीं हो रही है.
वॉल्यूम बढ़ेगा उधर ट्रेडिंग में, और इधर बढ़ गया है सोने और चांदी की कीमतें. एमसीएक्स में आज अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने की कीमतों में बढ़ोतरी रही है. 1054 रूपये की बढ़त के साथ प्रति 10 ग्राम सोना 66,804 रूपये में बिका है. मई कॉन्ट्रैक्ट वाली चांदी की कीमत भी 989 रूपये की बढ़त के साथ प्रति किलो 76,302 रूपये पर थी. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने की कीमत बढ़ी है। प्रति औंस सोने की कीमत $2,231.20 पर है, जबकि चांदी की कीमत प्रति औंस $25.66 पर है। हम एक नई चीज देख रहे हैं कि सोने की कीमत भी बढ़ रही है और मार्केट भी बढ़ रहा है। पहले ऐसा माना जाता था कि बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
बिल्कुल, काफी समय तक ये माना जाता था, लेकिन कुछ समय से यही देखा जा रहा है कि अगर ब्याज दरें भी बढ़ती हैं तभी भी सोना बढ़ रहा है, ब्याज दरें अगर घटने का थोड़ा अंदेशा होता है तभी भी सोना बढ़ता है, और अगर विश्व में बाजार जो है इक्विटी मार्केट्स बढ़ रहे हैं तभी भी सोने के भाव जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं। तो कारण यही है कि विश्व में अगर आप देखें तो बहुत किस्म की उथल पुथल चल रही है, जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी चल रही है, प्लस जो सेंट्रल बैंकर्स हैं वो भी सोने की खरीदारी कर रहे हैं, तो सोने की जो डिमांड है वो थोड़ी सी मजबूत बनी हुई है और वही रिफ्लेक्ट कर रही है मेटल्स में, प्रेशियस मेटल्स में।
ऐसे में सोने में इन्वेस्टमेंट भी कोई खराबी नहीं है, हालांकि आप दोनों महिलाएं हमारे आजू बाजू में बैठी हुई हैं और सोने की कीमत बढ़ने से महिलाओं को खासा एक थोड़ा सा झटका लगता है जो शादी ब्याह के मौके पे या अपने पहनने के इस्तेमाल के लिए सोना खरीदती हैं।
बिल्कुल, भारत में तो सोने का दाम जो है बढ़ता है तो काफी दुख होता है हाउस होल्ड्स को, क्योंकि हाउस होल्ड्स जो है बहुत सोना जो है एक बहुत बड़ा ही फेटिश होता है उनके लिए खरीदना जो है, तो जाहिर सी बात है कि सोने के दाम बढ़ना बहुत गुड न्यूज नहीं होता है। लेकिन हाँ, निवेशकों के जरिए अगर हम देखें कि सोने ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या यही तेजी बरकरार रहेगी, खासतौर से जब हम ब्याज दरें बढ़ने की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है वो बनी हुई है, तो इस स्थिति में एक सोना जो है प्रेशियस मेटल एक अच्छा निवेश डेस्टिनेशन माना जाता है। जी,
alright, oil prices remained largely unchanged as an unexpected decline in US crude inventories and the US Federal Reserve's adherence to its rate cut projections for the year provided support. And now, friends, well, thank you, Deepshikha, for being with us here. Before we close, the headlines again. BSE Sensex jumps 539 points. Nifty closes above 22,000 as US Fed signals 3 rate cuts this year. US Federal Reserve holds interest rates unchanged for 5th straight time. Bank of England also keeps key interest rate steady. And gold jumps over 1,000 rupees in futures market. Silver also rises 989 rupees at MCX. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra, friends. Goodbye for now.
Namaskar.